नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम 20वीं सदी के एक बहुत ही प्रभावशाली विचारक फ्रेडरिक ऑगस्ट वॉन हायक के जीवन और उनके विचारों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं।
बिल्कुल, एक ऐसा नाम जिनके विचारों पर आज भी गर्मा गर्म बहस होती है।
हाँ, और सोचिए उनका जीवन काल कितना लंबा और घटनाओं से भरा रहा। 1899 में वियना में जन्म, जब ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य था, और 1992 में निधन, जब बर्लिन की दीवार गिर चुकी थी, सोवियत संघ टूट चुका था।
मतलब पूरी एक सदी का इतिहास उन्होंने अपने आंखों से देखा। दो विश्व युद्ध, महामंदी, फासीवाद, साम्यवाद का आना जाना, सब कुछ।
और वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, वो एक अर्थशास्त्री थे, राजनीतिक दार्शनिक थे, नोबेल पुरस्कार विजेता भी। उनके जो विचार हैं, खासकर मुक्त बाजार और सरकार की भूमिका पर, वो आज भी बहुत प्रासंगिक हैं।
सही कहा। तो आज हम उनके जीवन, उनके मुख्य कामों और विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी हमारे पास है उनके जीवन चरित्रों वगैरह से।
हाँ, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता। हायक का वियना, वो कैसा शहर था उनके समय में?
देखिए, पहले विश्व युद्ध के बाद का वियना एक अजीब उथल पुथल का केंद्र था। एक तरफ तो पुराने साम्राज्य की एक उदारवादी बौद्धिक विरासत थी, फ्रॉयड, क्लिम्ट, महालर जैसे लोग थे।
हाँ, विटगेंस्टाइन भी तो थे, दार्शनिक माहौल तो जबरदस्त रहा होगा।
बिल्कुल, विटगेंस्टाइन तो उनके रिश्तेदार भी थे, और साथ ही अर्थशास्त्र में ऑस्ट्रियन स्कूल पहले से था जो कार्ल मंजर ने शुरू किया था। ये लोग व्यक्तिवाद पर, सब्जेक्टिव वैल्यू पर जोर देते थे।
लेकिन युद्ध के बाद तो हालात खराब हो गए थे ना?
बहुत ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता थी, हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब भयानक महंगाई थी, समाजवाद और रूढ़िवाद के बीच टकराव था, सड़कों पर हिंसा भी होती थी, और ऊपर से फासीवाद और नाजी जर्मनी का खतरा मंडरा रहा था।
ऐसे में तो लोग समाधान के लिए सरकार की तरफ ही देखेंगे ना, मतलब केंद्र से कुछ हो, कोई योजना बने।
हाँ, ज्यादातर बौद्धिक माहौल उसी तरफ था, केंद्र नियोजित समाधानों की तरफ। लेकिन यहीं पर हायक की मुलाकात हुई लुडविग वॉन मिसेस से। मिसेस उनके गुरु बने।
अच्छा।
और मिसेस और हायक का जो छोटा सा समूह था, वो इस धारा के एकदम उलट खड़ा था। वो व्यक्तिवाद की, मुक्त बाजार की बात कर रहे थे। उनका जोर इस बात पर था कि इंसान का ज्ञान सीमित है, इसलिए बड़ी बड़ी सरकारी योजनाएं खतरनाक हो सकती हैं।
ये तो उस समय की सोच से बिल्कुल अलग रहा होगा।
बिल्कुल अलग। उनके समकालीन थे कार्ल पॉपर जैसे दार्शनिक। बाद में लंदन में उनकी टक्कर हुई जॉन मेनार्ड कीन्स से, जिनकी सोच तो एकदम विपरीत थी।
हाँ, कीन्स और हायक की बहस तो बहुत मशहूर है।
और महामंदी और फिर तानाशाही के उभार ने इन बहसों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा। ये सवाल बन गया कि पश्चिमी सभ्यता बचेगी कैसे। बड़ा दिलचस्प है कि कैसे इस संकट वाले माहौल ने ही हायक के स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था पर जो मूल विचार थे, उनको आकार दिया।
तो जरा उनके निजी जीवन पर भी नजर डालें। वियना में एक पढ़े लिखे परिवार में जन्म हुआ था।
जी।
पिता डॉक्टर और वनस्पति शास्त्री।
हाँ, और विटगेंस्टाइन के सेकंड कजिन थे वो, तो घर में बौद्धिकता की कमी नहीं थी। लेकिन पहला विश्व युद्ध, उसका असर बहुत गहरा पड़ा। वो इटली के मोर्चे पर लड़े थे।
अच्छा, सेना में थे?
हाँ, तोपखाने में अधिकारी थे, और युद्ध की जो क्रूरता थी, समाज को बिखरते हुए देखा, उस अनुभव ने उनकी शुरुआती समाजवादी सोच को बिल्कुल बदल दिया। उनके मन में ये सवाल बैठ गया कि समाज टूटता क्यों है, इसे बिखरने से कैसे बचाया जाए।
और फिर युद्ध के बाद उन्होंने पढ़ाई पूरी की?
हाँ, वियना विश्वविद्यालय से कानून और राजनीति विज्ञान में डॉक्टरेट की। पर असली मोड़ आया मीसेस के सेमिनार से जुड़ने के बाद। मीसेस उनके मेंटर बने। फिर उन्होंने व्यापार चक्र पर काम किया, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी बने।
और फिर वो लंदन चले गए, LSE।
हाँ, 1931 में लायनल रॉबिन्स उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ले आए, और वहां वो बहुत जल्दी कीन्स के मुख्य बौद्धिक प्रतिद्वंद्वी बन गए।
उनकी बहसें बहुत तेज थीं।
लेकिन फिर दूसरा विश्व युद्ध आया, और उसके बाद तो कीन्स का डंका बजने लगा। हायक का क्या हुआ?
हाँ, कीन्जियन अर्थशास्त्र का दौर आ गया, और हायक एक तरह से अकेडमिक दुनिया में हाशिए पर चले गए। वो खुद इन सालों को अपने निर्वासन के साल कहते थे।
मतलब उन्हें पहचान नहीं मिली उस वक्त?
उस तरह की नहीं जैसे कीन्स को मिली। 1950 में वो शिकागो विश्वविद्यालय गए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्हें अर्थशास्त्र विभाग में पोस्ट नहीं मिली, बल्कि कमिटी ऑन सोशल थॉट में मिली।
अच्छा, ऐसा क्यों?
शायद ये दिखाता है कि उनका फोकस अब सिर्फ तकनीकी अर्थशास्त्र पर नहीं था। वो ज्यादा बड़े सवालों में उलझ रहे थे, राजनीतिक दर्शन, कानून, समाज के सिद्धांत। और इसी दौरान 1947 में उन्होंने मॉन्ट पेलेरिन सोसाइटी की स्थापना की।
हाँ, ये सोसाइटी तो आज भी सक्रिय है ना?
हाँ, शास्त्रीय उदारवाद को बचाने के लिए।
बिल्कुल, उसे जिंदा रखने के लिए। और उनके निजी जीवन में भी इसी दौरान, मतलब 1950s में, पहली पत्नी से तलाक और फिर बचपन की प्रेमिका से शादी। ये काफी विवादास्पद रहा, कुछ दोस्त भी छूट गए।
लेकिन फिर कहानी पलटी।
हाँ, जीवन के आखिरी दौर में, खासकर 1974 में नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद, उनके विचारों का जैसे पुनर्जन्म हुआ। 80 के दशक में थैचर और रीगन की जो मुक्त बाजार नीतियां आईं,
हाँ, उनका बौद्धिक पितामह माना जाता है हायेक को।
बिल्कुल, उन्हें प्रेरणा स्रोत माना गया। और 1992 में जब उनका निधन हुआ, तब तक वो उन समाजवादी व्यवस्थाओं का पतन देख चुके थे जिनके खिलाफ वो लगभग आधी सदी से लिख रहे थे, चेतावनी दे रहे थे।
तो ये जीवन के उतार चढ़ाव और बौद्धिक संघर्ष उन्हें किन बड़े विचारों तक ले गए, यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है ना?
बिल्कुल, उनका काम सिर्फ अर्थशास्त्र नहीं बल्कि समाज और स्वतंत्रता के गहरे सवालों से जुड़ा है।
तो शुरुआत कहाँ से हुई?
उनकी शुरुआती किताबें कौन सी थी? शुरुआत तो तकनीकी अर्थशास्त्र से हुई, जैसे मॉनेटरी थियोरी एंड द ट्रेड साइकिल 1929 और प्राइसेस एंड प्रोडक्शन 1931। इसमें उन्होंने ऑस्ट्रियन व्यापार चक्र सिद्धांत दिया।
वो क्या था संक्षेप में?
उनका कहना था कि जब सरकार ब्याज दरें कृत्रिम रूप से, मतलब आर्टिफिशियली कम कर देती है, कर्ज सस्ता कर देती है, तो अर्थव्यवस्था में गलत जगह निवेश होने लगता है, जिसे वो मैल इन्वेस्टमेंट कहते थे।
तो मैल इन्वेस्टमेंट मतलब खराब निवेश, कोई उदाहरण?
हाँ, जैसे मान लीजिए ब्याज बहुत सस्ता है, तो बिल्डर शायद जरूरत से ज्यादा लग्जरी फ्लैट बनाने लगे, जबकि असल में मांग उतनी ना हो। पैसा गलत जगह लग गया। इससे थोड़े टाइम के लिए तो तेजी दिखती है, बूम आता है, लेकिन फिर मंदी आना तय है, बस्ट होता है।
अच्छा, तो ये सरकारी दखल के अनचाहे नतीजे हैं?
बिल्कुल, ये विचार उनके काम में हमेशा रहा। फिर 1930 और 40 के दशक में वो सोशलिस्ट कैलकुलेशन डिबेट में उतरे।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बहस थी।
इसमें उनके लेख जैसे इकोनॉमिक्स एंड नॉलेज 1937 और खासकर द यूज ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी 1945 मील का पत्थर है। यहीं उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध अवधारणा दी, ज्ञान की समस्या।
ज्ञान की समस्या, ये क्या है? सुनने में सरल लगता है पर शायद गहरा है।
बहुत गहरा। हायेक का कहना था कि किसी भी जटिल अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो जानकारी, जो ज्ञान चाहिए, वो किसी एक व्यक्ति या कमिटी या सुपर कंप्यूटर के पास हो ही नहीं सकता। वो ज्ञान तो लाखों करोड़ों लोगों के बीच बिखरा हुआ है।
बिखरा हुआ है कैसे?
हर व्यक्ति के पास अपनी स्थानीय परिस्थितियों, अपनी जरूरतों, अपनी क्षमताओं का ज्ञान होता है, और ये ज्ञान अक्सर अव्यक्त होता है।
टैसिट नॉलेज, अव्यक्त ज्ञान, मतलब
ऐसा ज्ञान जिसे आप आसानी से शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जैसे साइकिल चलाना, आप चला लेते हैं पर कैसे चलाते हैं हर स्टेप बताना मुश्किल है। या एक अनुभवी कारीगर का हुनर, या एक दुकानदार का अपने ग्राहकों की पसंद का अंदाजा, ये सब टैसिट नॉलेज है।
अच्छा, हाँ, समझ रही हूँ।
तो हायेक ने कहा कि कोई भी सेंट्रल प्लानर, कोई योजना बनाने वाला इस बिखरे हुए और अव्यक्त ज्ञान को कभी इकट्ठा कर ही नहीं सकता, ये असंभव है। इसीलिए सेंट्रल प्लानिंग सिर्फ अकुशल नहीं है बल्कि तार्किक रूप से असंभव है, लॉजिकली इम्पॉसिबल है।
बाबरे, ये तो बहुत बड़ा दावा है। तो फिर अर्थव्यवस्था चलती कैसे है? अगर कोई योजना नहीं बना रहा तो समन्वय कैसे होता है?
हायेक ने कहा कीमतों के जरिए, मूल्य प्रणाली, प्राइस सिस्टम, कीमतें एक विशाल सूचना नेटवर्क की तरह काम करती हैं।
कीमतें? वो कैसे?
सोचिए, अगर अचानक किसी चीज की कीमत बढ़ जाती है तो ये एक सिग्नल है। ये बता रहा है कि या तो वो चीज कम हो गई है या उसकी मांग बढ़ गई है। अब इस सिग्नल को देखकर लोग अपने आप अपना व्यवहार बदल लेते हैं।
कैसे?
उत्पादक देखेंगे कि कीमत बढ़ी है तो वो ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे, उपभोक्ता देखेंगे कि महंगी हो गई है तो कम इस्तेमाल करेंगे या उसका विकल्प ढूंढेंगे। इसके लिए किसी को ऊपर से आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती।
हाँ, ये तो अपने आप होता है।
बिल्कुल, ये एक स्वतःस्फूर्त समन्वय है जो किसी एक दिमाग की योजना का नतीजा नहीं है। बाजार इस बिखरे हुए ज्ञान को इस्तेमाल करने का एक तरीका है।
ये तो कमाल का नजरिया है। कीमतें सिर्फ दाम नहीं, जानकारी का माध्यम है।
एग्जैक्टली, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 1944 में अपनी सबसे मशहूर किताब लिखी, द रोड टू सफरडम।
हाँ, गुलामी का रास्ता, ये तो आम लोगों के लिए लिखी गई थी ना।
हाँ बिल्कुल, इसमें उन्होंने चेतावनी दी कि आर्थिक मामलों में सरकार का नियंत्रण बढ़ाते जाना, चाहे वो समाजवाद के नाम पर हो या फासीवाद के, वो अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को खत्म करता है और तानाशाही की तरफ ले जाता है, क्योंकि सारी शक्ति कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाती है।
इस किताब ने तो उन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाई, लेकिन विवाद भी बहुत हुआ।
हाँ बहुत, कई अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ये अर्थशास्त्र नहीं राजनीति है, और आलोचक आज भी कहते हैं कि हायेक ने कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट के खतरों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया।
हाँ, ये आलोचना तो है कि क्या थोड़ी सी सामाजिक सुरक्षा भी तानाशाही का पहला कदम है।
सही बात है, आलोचक कहते हैं कि हायेक बाजार की अपनी समस्याओं जैसे असमानता या एकाधिकार को नजरअंदाज करते हैं। ये बहस तो आज भी चलती है कि कितनी सरकारी दखलंदाजी सही है और कितनी खतरनाक।
इस किताब के बाद उनके और कौन से बड़े काम आए?
फिर 1960 में आई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का संविधान। ये उनका सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी दार्शनिक काम है।
इसमें क्या खास था?
इसमें उन्होंने स्वतंत्रता को परिभाषित किया। उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब था दूसरों की मनमानी जबरदस्ती से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम द आर्बिट्ररी कोअर्शन बाय अदर्स, जिसे नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं। और उन्होंने कहा कि ऐसी आज़ादी सिर्फ कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ के तहत ही संभव है।
कानून का शासन मतलब?
मतलब ये कि कानून सबके लिए बराबर हो, सरकार भी उन्हीं नियमों से बंदी हो जो नागरिकों पर लागू होते हैं, कोई मनमानी ना कर सके, कानून पहले से तय हो, स्पष्ट हो। और इसी किताब में उन्होंने स्वतः स्फूर्त व्यवस्था, स्पॉन्टेनियस ऑर्डर के विचार को और विकसित किया।
स्पॉन्टेनियस ऑर्डर, ये क्या है?
ये वही विचार है जो हमने कीमतों के बारे में बात करते हुए छुआ था, कि समाज में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे भाषा, बाजार, रिवाज, यहाँ तक कि कानून के कई नियम, ये सब इंसानी कामों का नतीजा तो है, पर इन्हें किसी ने बैठकर डिज़ाइन नहीं किया है। ये धीरे धीरे खुद विकसित हुई हैं लाखों लोगों के आपसी व्यवहार से।
जैसे कोई रास्ता बन जाता है घास पर बार बार चलने से, किसी ने बनाया नहीं पर बन गया।
क्या बढ़िया उदाहरण दिया, बिल्कुल वैसा ही। हायेक ने जानबूझकर बनाई गई व्यवस्था, जिसे वो टैक्सीज कहते थे, जैसे एक आर्मी, और अपने आप विकसित हुई व्यवस्था, जिसे वो कॉस्मोस कहते थे, जैसे एक शहर, के बीच फर्क किया। उनका मानना था कि समाज की जटिल और अच्छी व्यवस्थाएं ज्यादातर कॉस्मोस होती हैं, टैक्सीज नहीं।
ये तो सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। हम अक्सर हर चीज को डिजाइन करने की सोचते हैं।
हाँ, और यहीं पर हायेक हमें चुनौती देते हैं अपने आखिरी बड़े काम में, जो तीन खंडों में आया, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, 1973 to 1979। उन्होंने इसी विचार को और आगे बढ़ाया। उन्होंने आधुनिक लोकतंत्रों की आलोचना की कि वो कानून, लॉ, जो समाज में विकसित होता है, और विधान, लेजिस्लेशन, जो सरकारें बनाती हैं, के बीच का फर्क भूल गए हैं।
अब सामाजिक न्याय पर भी उन्होंने काफी कुछ कहा था ना?
हाँ, उन्होंने सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की अवधारणा पर बहुत तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि ये एक अर्थहीन, मीनिंगलेस या मृग तृष्णा, मिराज जैसा शब्द है।
अर्थहीन, ऐसा क्यों?
उनका तर्क था कि न्याय या अन्याय इंसानों के जानबूझकर किए गए कामों पर लागू होता है। बाजार एक इम्पर्सनल प्रक्रिया है, उसका कोई इरादा नहीं होता, तो बाजार के जो नतीजे निकलते हैं कि कोई अमीर है, कोई गरीब, उन्हें न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कहना ऐसा ही है जैसे कहना कि आज का मौसम अन्यायपूर्ण है। उनका कहना था कि न्याय का संबंध नियमों से होना चाहिए, नतीजों से नहीं। मतलब नियम सबके लिए बराबर हों, कानून का शासन, फिर नतीजे जो भी निकले। सामाजिक न्याय के नाम पर नतीजों को बदलने की कोशिश करना मनमानी शक्ति को बढ़ावा देता है और स्वतंत्रता के लिए खतरनाक है।
ये तो आज के दौर में बहुत ही रैडिकल बल्कि विवादास्पद विचार है, जहां सामाजिक न्याय पर इतना जोर दिया जाता है।
बिल्कुल, और इसीलिए हायेक आज भी इतने प्रासंगिक और विवादास्पद दोनों हैं। उनकी विरासत भी देखिए कितनी नाटकीय रही है।
हाँ, वो हाशिए पर चले गए थे फिर वापस आए।
बिल्कुल, 50 और 60 के दशक में लगभग भुला दिए गए, फिर 70 के दशक में स्टैगफ्लेशन आया, यानी महंगाई भी और बेरोजगारी भी। केन्स के मॉडल लड़खड़ाने लगे, तब लोगों को हायेक की पुरानी चेतावनियां याद आई।
और फिर मिला नोबेल पुरस्कार।
हाँ, 1974 में। और मजे की बात ये कि उन्हें ये पुरस्कार मिला गुन्नार मिर्दल के साथ, जो एक स्वीडिश समाजवादी थे, मतलब उनके एकदम वैचारिक विरोधी।
ये तो बड़ी विडंबना है।
हाँ, ये शायद दिखाता था कि अब केन्जियन सर्विस सम्मति टूट रही है। हायक अचानक फिर से चर्चा में आ गए, और फिर 80s के दशक में थैचर और रीगन, उन्होंने तो खुलकर हायक को अपनी प्रेरणा बताया। खासकर थैचर ने तो सार्वजनिक रूप से द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी का जिक्र किया था,
तो उनके विचार सीधे नीतियों को प्रभावित करने लगे।
हाँ, आधुनिक उदारवादी और रूढ़ीवादी आंदोलनों के लिए उनके लेख प्रमुख ग्रंथ बन गए। लेकिन जैसा हमने कहा, आलोचना भी जबरदस्त हुई और होती है।
किस तरह की आलोचना?
मुख्य आलोचना यही है कि उनके विचारों ने कल्याणकारी राज्य को कमजोर करने में मदद की, जिससे आर्थिक असमानता बढ़ी। आलोचक कहते हैं कि वो बाजार की विफलताओं को कम आंकते हैं और सरकारी समाधानों को जरूरत से ज्यादा खतरनाक बताते हैं।
लेकिन उनके मूल विचार आज भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
हाँ बिल्कुल, खासकर दो विचार, ज्ञान की समस्या और स्वतः स्फूर्त व्यवस्था। ये आज भी अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, कानून, समाजशास्त्र, यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहसों में भी जिंदा है।
एआई में कैसे?
जैसे ये सवाल कि क्या बिग डेटा और एआई आखिरकार सेंट्रल प्लानिंग की ज्ञान की समस्या को हल कर सकते हैं? क्या मशीनें वो सारा बिखरा हुआ ज्ञान इकट्ठा करके प्रोसेस कर सकती हैं जिसकी बात हायक करते थे? या फिर क्रिप्टो करेंसीज जैसी चीजें, क्या ये स्वतः स्फूर्त व्यवस्था का एक नया रूप है जो बिना किसी केंद्रीय नियंत्रण के चल रहे हैं? ये सवाल आज भी हायक के विचारों को प्रासंगिक बनाए हुए हैं।
तो कुल मिलाकर हायक एक ऐसे विचारक हैं जिन्हें पसंद या नापसंद किया जा सकता है, पर नजरअंदाज करना मुश्किल है। उनके विचार हमें समाज, स्वतंत्रता और सबसे बढ़कर हमारे अपने ज्ञान की सीमाओं के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं।
सही कहा।
चलिए उनके कुछ मशहूर कथन देखते हैं जो उनकी सोच को और साफ करते हैं। एक है, अर्थशास्त्र का अनोखा काम पुरुषों को ये दिखाना है कि वे वास्तव में उसके बारे में कितना कम जानते हैं जिसे वे डिजाइन करने की कल्पना कर सकते हैं।
हाँ, ये सीधा उनके घातक अहंकार, द फेटल कंसीट वाले विचार से जुड़ा है कि हम सोचते हैं हम सब डिजाइन कर सकते हैं, पर असल में हम कितना कम जानते हैं।
बिल्कुल। दूसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला मुख्य रूप से हम सभी की उस अनिवार्य अज्ञानता की पहचान पर टिका है।
ये कमाल का है। मतलब आजादी सिर्फ नैतिक रूप से सही नहीं है, बल्कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम सब कुछ नहीं जानते। आजादी हमें प्रयोग करने, सीखने, नई चीजें खोजने का मौका देती है। ये स्वतंत्रता का ज्ञान मीमांसीय आधार है।
हाँ, ये बहुत शक्तिशाली तर्क है। तीसरा, आपातकाल हमेशा से वह बहाना रहा है जिस पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सुरक्षा उपायों को नष्ट किया गया है।
आह, ये तो आज भी कितना सच लगता है ना? संकट के समय में कैसे सरकारें ज्यादा ताकत ले लेती हैं, इसकी सीधी चेतावनी।
बिल्कुल। चौथा, कानून के समक्ष समानता ही स्वतंत्रता के संघर्ष का महान लक्ष्य रहा है। ये उनके कानून के शासन पर जोर को दिखाता है। नियम बराबर हों, नतीजे नहीं।
हाँ, निष्पक्ष नियम।
और पांचवा, प्रतिस्पर्धा एक खोज प्रक्रिया है।
कंपटीशन एक डिस्कवरी प्रोसेस है।
ये छोटा सा वाक्य बहुत गहरा है। ये कहता है कि कंपटीशन सिर्फ कीमतों को कम करने या क्वालिटी बढ़ाने का जरिया नहीं है, ये ज्ञान पैदा करने का तरीका है।
ज्ञान पैदा करने का?
कैसे?
कंपटीशन के जरिए ही नई चीजें खोजी जाती हैं, बेहतर उत्पाद बनाने के सस्ते तरीके, ग्राहकों की ऐसी जरूरतें जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था। सेंट्रल प्लानिंग तो मौजूदा ज्ञान के आधार पर ही काम कर सकती है, पर कंपटीशन लगातार नया ज्ञान खोजता रहता है, उसे उजागर करता रहता है।
ये तो बहुत दिलचस्प है। प्रतिस्पर्धा मतलब खोज। अच्छा, उनके विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने की भी कोई कोशिश हुई थी?
हाँ, एक बहुत मजेदार बात है, द रोड टू सर्फडम का एक कार्टून संस्करण।
कार्टून?
हाँ।
हायक के विचारों का?
हाँ। 1945 में अमेरिका की एक मशहूर मैगजीन थी लुक, उसमें छपा था। बाद में जनरल मोटर्स कंपनी ने उसे एक पैम्फलेट की तरह लाखों की संख्या में बांटा। तो सोचिए, हायक के इतने गंभीर विचारों को कार्टून के जरिए आम अमेरिकी तक पहुंचाया गया।
ये वाकई बहुत दिलचस्प है। और ये बातें कि वो विटगेंस्टाइन के रिश्तेदार थे और नोबेल पुरस्कार अपने विरोधी मेडल के साथ मिला, ये सब उनकी कहानी को और भी रंगीन बना देते हैं।
बिल्कुल, एक जटिल और प्रभावशाली व्यक्तित्व।
तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं, हायक का ये जो स्वतः स्फूर्त व्यवस्था का विचार है, ये हमारे उस आम ख्याल को कैसे चुनौती देता है कि समाज की हर समस्या का हल किसी न किसी योजना, किसी डिजाइन में है।
अच्छा सवाल है।
हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ करना पड़ेगा, कोई प्लान बनाना पड़ेगा, किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, पर हायक हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि ऐसा हो सकता है कि बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छी व्यवस्थाएं वो हों जो बनाई नहीं जाती बल्कि धीरे धीरे खुद उभरती हैं।
और जब हम उन जटिल व्यवस्थाओं को, जिनके लिए जरूरी सारा ज्ञान हमारे पास है ही नहीं, डिजाइन करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमारी नेक इरादों वाली योजनाएं भी अनजाने में नुकसानदेह नतीजे दे सकती हैं?
बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिसपे सोचते रहने की जरूरत है। संगीत समापन कथन। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।